بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم سامعین, پیش خدمت ہے جاسوسی دنیا ناول نمبر 107 تیسری ناگن, مصنف ابن صفی, پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لیے رابطہ کیجیے 0306787822 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 1,
جاسوسی دنیا نمبر 107 تیسری ناگن دوسرا حصہ, پیشرس خونی ریشے کے بعد تیسری ناگن حاضر خدمت ہے. اور اب اس کے بعد کیا عرض کروں, کیونکہ خطوط کا ایک ڈھیر نظروں کے سامنے ہے اور خونی ریشے جیسی کتاب پیش کرنے کے سلسلے میں آپ کی طرف سے اپنی پیٹھ ٹھونک رہا ہوں. بہت بہت شکریہ پسندیدگی کا. تیسری ناگن بھی آپ کو پسند آئے گی. تاخیر سے کتابیں پیش کرنے کے سلسلے میں اکثر وجہ بتا کر معذرت طلب کی ہے, لیکن اس وجہ کو آپ درخور اعتنا نہیں سمجھتے, کیونکہ آپ کی دانست میں معدے کی خرابی اور کراچی دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں ہیں. پھر کون سا کام رکتا ہے کراچی میں؟ کرکٹ نہیں ہوتا کہ عشقیہ فلمیں نہیں چلتی. آخر جاسوسی ناولوں نے کیا قصور کیا ہے کہ انہیں معدے کی خرابی کی نظر کر دیا جائے؟ بات تو ٹھیک ہے, شاید میں بھی معدے کی خرابی کو عادت بنا لینے میں کامیاب ہو جاؤں. بہت سے حضرات نے اطلاع دی ہے کہ میرے ناول گیت اور خون کا لاہور کے کسی پبلشر نے مرڈر کیا ہے. ابھی تک مجھے وہ کتاب نہیں مل سکی جسے گیت اور خون کا چربک کہا جا رہا ہے. بہرحال آپ مطمئن رہیں, اگر ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے تو اس پبلشر کے خلاف یقینی طور پر قانونی کاروائی کی جائے گی. یارو کہاں تک لکھوں, کیا کیا دیکھوں؟ ویسے اس میں کچھ قصور آپ کا بھی ہے. آپ فریدی, حمید اور عمران کے علاوہ اور کسی کردار کی کہانیاں پڑھنا ہی نہیں چاہتے. کئی لوگوں نے کوشش کی, خلوص نیت سے چاہا کہ آپ ان کے علاوہ بھی کسی کو لفٹ دیں, لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے. نقلی ہی صحیح پڑھیں گے انہی کرداروں سے متعلق. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. اگر انکار ہے تو یہ فرمائیے کہ آخر ان حشرات الارض کی کھپت کہاں ہوتی ہے؟ عالم ارواح سے تعلق رکھنے والوں کو جاسوسی ناولوں سے دلچسپی نہیں ہو سکتی, لہٰذا آپ مجھے اس مسئلہ پر بور کرنا چھوڑ دیجیے. ویسے میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر کسی نے بھی ظفر الملک اور جیمسن کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اسے اس کے لیے عدالت میں جواب دہ ہونا پڑے گا. اس کے بعد ان خطوط کے جواب کا نمبر آتا ہے جن میں مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ میں ادب کی بھی کچھ خدمت کروں. عجیب بات ہے کہ جب میرا کوئی ناول بہت پسند کیا جاتا ہے تو مجھ سے ادب کی خدمت کرنے کی فرمائش ضرور کی جاتی ہے. بھائی آپ مجھے صرف اردو کی خدمت کرنے دیجیے. اس کے باوجود کہ صرف نہ ہو کی غلطیاں مجھ سے بھی سرزد ہوتی ہوں گی, آپ میری اس وقت کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جب مجھے کسی سندھی یا بنگالی بھائی کا خط بعی مضمون ملتا ہے کہ محض آپ کی کتابیں پڑھنے کے شوق میں اردو پڑھ رہا ہوں, پڑھ کر سنانے والوں کا احسان کہاں تک لیا جائے؟ اب بتائیے میں ادب کی خدمت کروں یا میرے لیے اردو ہی کی خدمت مناسب ہوگی؟ ویسے اپنے نظریات کے مطابق میں ادب کی بھی خدمت کر رہا ہوں اور سوسائٹی کی بھی, اور میری اس خدمت کا انداز نہ تو بدلتے ہوئے حالات سے متاثر ہوتا ہے اور نہ وقتی مصلحتوں کے تحت کوئی دوسری شکل اختیار کر سکتا ہے. ہر حال میں قانون کا احترام کرنا سکھاتا ہوں. کچھ لوگ ادب میں میرے مقام کی بات شروع کر دیتے ہیں. اس سلسلے میں عرض ہے کہ آپ کی نظروں میں میرا کوئی مقام ضرور ہے, ورنہ آپ کو اس کی فکر ہرگز نہ ہوتی. ویسے اگر آپ ادب میں مقام کے سلسلے میں مجھ سے کچھ سننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے. اساطیری کہانیوں سے لے کر مجھ حقیر کی کہانیوں تک آپ کو ایک بھی ایسی کہانی نہ ملے گی جس میں جرائم نہ ہوں. اور آج بھی آپ جسے بہت اونچے قسم کے ادب کا درجہ دیتے ہیں اور جس کا ترجمہ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی آئے دن ہوتا رہتا ہے, کیا جرائم کے تذکروں سے پاک ہوتا ہے؟ کیا اس کے مضرب رساں پہلوؤں پر ہمارے نقاد کی نظر پڑتی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ इस सवाल का जवाब ये है कि मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले लोग कहानियों में भी जो दरअसल ज़हनी फरार का जरिया होती हैं, पुलिस या जासूस का वजूद नहीं बर्दाश्त कर सकते। चलिए पुलिस को इसलिए बर्दाश्त कर लेंगे कि वो ललकार कर सामने आती है, लेकिन जासूस तो बेखबरी में पता नहीं कब गर्दन दबोच ले। लिहाजा अगर मुझे अदब में कोई मकाम पाने की ख्वाहिश है तो जासूस को छुट्टी देनी पड़ेगी, लेकिन मैं इस पर तैयार नहीं, क्योंकि मुझे हर हाल में शर पर खैर की फतह का परचम लहराना है। मैं बातिल को हक के सामने सरबुलंद नहीं दिखाना चाहता। मैं माशरे में मायूसी नहीं फैलाना चाहता, ऐसी मायूसी जो गलत रास्तों पर ले जाए। बस तो फिर आप भी मकाम वकाम का चक्कर छोड़िए और मुझे वहीं रहने दीजिए जहाँ मैं हूँ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद हैं और आप ये महसूस करते हैं कि मैं आपके थके हुए ज़हनों के लिए मेयारी तफरी मुहैया कर रहा हूँ, तो मैं इस पर मुतमईन हूँ। उम्मीद के आप भी मुतमईन हो गए होंगे। वस्सलाम, इब्ने सफी, 3/3/1966, सफ़ा नंबर 97। रास्ते अलग अलग, बेकरार रात के सन्नाटे में वो उस सुनसान सड़क पर गोया मौत के मुंतजिर थे। दो लाशें कैप्टन के कदमों में पड़ी हुई थीं। मरने वालों में से एक के हाथ से टार्च गिरी थी और सड़क पर पड़ी हुई अपनी रोशनी से दोनों लाशों के भयानक चेहरों के खदोखाल वाजह कर रही थी। सन्नाटा अथा सन्नाटा। दफतन हमीद इकराम की कराह सुनकर चूंका। क्या बात है? वो झुककर खिड़की से अगली सीट पर नजर डालता हुआ बोला, तो कुछ नहीं, ये इकराम की आवाज थी। उन दोनों को क्या हुआ? रीमा की कपकपाती हुई सी आवाज आई। मर गए, हमीद पुरसुकून लहजे में कहा। शायद ये भी सुकून की तलाश में थे। इन्हें अब्दी सुकून मिल गया, अब मैं पागल हो जाऊंगी। सुबह अंधेरे में मुझे पागल औरतों से खौफ मालूम होता है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो दोनों बख्शू दरिंदे थे या तुम दोनों। पागल हो जाने के बाद समझ में आ जाएगा, हमीद कहता हुआ झुका और टार्च उठाकर उन दोनों लाशों का जायजा लेने लगा। इतने में फरीदी नशेब से ऊपर आ गया और हमीद के हाथ से टार्च लेता हुआ बोला, वो राइफल उठाओ और उसकी कारतूसों की पेटी खोल लो। दूसरी लाश के नीचे से रिवॉल्वर बरामद हुआ था और उसकी कारतूसों की पेटी भी खोल ली गई थी। ये आप साइलेंसर से क्यों शोक फरमाने लगे हैं? दफतन हमीद बोला, साइलेंसर इस्तेमाल ना करता तो बात बढ़ जाती, वो फायरों की सिमत मालूम कर लेते, लिहाजा वक्त क्यों बर्बाद करता। चलो बैठो। वो उसे पिछली सीट पर धक्का देकर खुद भी स्टीयरिंग के सामने जा बैठा। आखिर में किस मुसीबत में फंस गया हूँ? इकराम की आवाज आई। फरीदी ने कुछ कहे बगैर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। तो क्या ये लाशें यहीं पड़ी रहे जाएंगी? रीमा हकलाई। लाशें एल्बम में तो चिपकाई नहीं जा सकती, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। खुदा वंदा, खुदा वंदा, रीमा सिसकने लगी। घबराओ नहीं, हमीद उसका शाना थपकता हुआ बोला, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है, लेकिन अब खजाने का नक्शा हमारे कब्जे में है। वो तुम्हारा बाल भी बीका नहीं कर सकते। खजाना बकवास है, वो झुंझलाकर बोली। खुदा जाने, हमीद ने ठंडी सांस ली। यकीन करो वो खुला हुआ झूठ था। मैं कैसे यकीन कर लूं, जबकि हॉलीवुड में आए दिन ऐसी कहानियां फिल्माई जाती रहती हैं। हमीद खामोश रहो, फरीदी ने सख्त लहजे में कहा और फिर सन्नाटा छा गया। अब उस गाड़ी में सिर्फ दो आदमी बाकी रह गए थे, एक वो जो ड्राइव कर रहा था और दूसरा उसके बराबर बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर अकबनुमा आईने को देखे जा रहा था। नासिर, ये क्या हो गया? कुछ देर बाद वो भराई हुई आवाज में बोला, ये इतना आसान काम नहीं है, ड्राइव करने वाले ने गुस्सीली आवाज में कहा। वो मौत का हरकारा है, आमतौर पर उसको इसी नाम से याद किया जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि अब हमें क्या करना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, तुम अकबनुमा आईने पर नजर रखो, अभी तक उसकी गाड़ी की रोशनी नहीं दिखाई दी। ये भी तो हो सकता है कि वो टेकमगढ़ की तरफ पलट गया हो, पहले भी उसने उसकी कोशिश की थी, नासिर बोला। बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हुआ हो, बुजदिली की बातें ना करो। जहन्नम में गई ऐसी रकम, मारे गए तो किस काम की? दूसरा बोला, खामोश रहो वरना अपनों ही के हाथों मारे जाओगे, नासिर बोला। तुमने मुझे इस जंजाल में फंसाया है, دولت زمین سے نہیں اگتی، قوت بازو سے حاصل کی جاتی ہے، ناصر نے کہا اور بایاں ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ کا ایک سوئچ آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، وہ اونچی آواز میں بولنے لگا۔ ہیلو ہیلو، اٹ از ناصر۔ ہیلو، ڈیش بورڈ سے آواز آئی۔ اٹ از جارا کاکا، میرے دو ساتھی کام آئے، ناصر بولا۔ حکم کے مطابق میں نے انہیں وارننگ دے کر گاڑی روکنے کو کہا تھا، انہوں نے گاڑی روکی تو لیکن نہ جانے کس طرح گاڑی سے کود گئے کہ ہم انہیں نہ دیکھ سکے۔ صرف لڑکی اور اکرام گاڑی میں موجود تھے۔ اچانک کسی طرف سے بے آواز فائرنگ شروع ہو گئی، میرے دو ساتھی مارے گئے اور مجھے آگے بھاگنا پڑا۔ اوور۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ ڈیش بورڈ سے آواز آئی۔ نیلم سرائے کے آس پاس، ناصر بولا۔ تم دونوں فی الحال وہیں چلے جاؤ، لکراس تمہیں وہیں ملے گا، آئندہ کے لیے اس سے ہدایات لو۔ اوکے سر، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے آواز آئی اور ناصر نے سوئچ آف کر دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دوسرا شکاری بولا، تم جھوٹ کیوں بولے تھے؟ کیپٹن حمید تو گاڑی میں موجود تھا۔ میں شکاری ہوں سمجھے؟ ناصر نے تلخ سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ کسی کا نمک خوار بھی نہیں، ٹھیکے پر کام کر رہا ہوں۔ میں پوچھ رہا ہوں، آخر یہ دو زندگیاں کس کھاتے میں جائیں گی جو کچھ دیر پہلے ختم ہو گئیں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے؟ میری ہی طرح وہ بھی دولت کی تلاش میں نکلے تھے۔ تم نے یہ ظاہر کر کے اچھا نہیں کیا تھا کہ تم فریدی کو جانتے ہو، وہ مجھے پہچانتا ہے، اس وقت سے جانتا ہے جب میں گرومی کے لیے شکار کیا کرتا تھا۔ اور یہ لکراس کون ہے جس سے ہم نیلم سرائے میں ملنے والے ہیں؟ غیر ملکی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر دوسرے شکاری بولا، سڑک سے اس وقت گاڑی ہٹانا مناسب نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے کہ نیلم سرائے پہنچنے کے لیے ہمیں سڑک چھوڑنی پڑے گی، تو اس سے کیا؟ برف کے نیچے کیا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اوہ، ناصر نے کہکہا لگایا، تم موت سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ شکار کھیلنا بڑی خوبصورت درندگی ہے، لیکن آدمیوں کا شکار ہوتے پہلی بار دیکھا ہے میں نے۔ وہ دونوں بیچارے، کیا ان کی لاشیں وہیں پڑی رہ گئی ہوں گی؟ تمہیں صرف دو ایک پگ برانڈی کے درکار ہیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، ناصر نے کہا اور گاڑی کی رفتار کم کر کے اسے داہنی جانب ڈھلان میں اتارنے لگا۔ کیا تم واقعی پاگل ہو گئے ہو؟ دفتن دوسرے شکاری چیخا۔ تو کیا مجھے نیلم سرائے نہ جانا چاہیے؟ ناصر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہرگز نہیں، سیدھے چلو۔ اچھی بات ہے، ناصر نے بریک لگاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی بائیں ہاتھ سے اس نے ریوالور نکالا تھا، دوسرے شکاری کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ گاڑی ریورس گیئر میں پھر سڑک کی طرف واپس جا رہی تھی اور دوسرے شکاری کہہ رہا تھا، ریگم بالا ہی کی طرف چلو، مجھے خوشی ہے کہ تم میری یہ خواہش پوری کر رہے ہو، ورنہ عام حالات میں تم سے زیادہ ضدی آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ ناصر نے کہکہا لگایا، ایسا لگا جیسے یہ محض خوش دلی کا اظہار ہو۔ دوسرا شکاری بھی اس کہکہے میں شریک ہو کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ دفتن اس کے کان کے قریب فائر ہوا اور دانت نکلے ہی رہ گئے۔ دوسرے لمحے میں اسی کی جانب کا دروازہ کھلا تھا اور اس کی لاش سڑک پر جا پڑی تھی۔ دروازہ بند ہوا، ساتھ ہی ناصر کا دوسرا کہکا فضا میں گونجا اور گاڑی پھر اسی ڈھلان میں اتر گئی جدھر جانے سے دوسرے شکاری نے ناصر کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بالکل خاموش بیٹھے تھے اور گاڑی معمولی رفتار سے ریگم بالا کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ کیپٹن حمید نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر آہستہ روی میں کون سی مصلحت پوشیدہ ہے، ویسے اب وہ بولنا ہی نہیں چاہتا تھا، محض اس لیے کہ ڈیش بورڈ والا ٹرانسمیٹر خودکار معلوم ہوتا تھا۔ دفتن فریدی بولا، حمید تم خاموش کیوں ہو؟ میں چاہتا ہوں بیچاری ریما اب سو جائے، اس کے اعصاب پر بہت برا اثر پڑا ہے، حمید نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس سے کہو ہم پر اعتماد کرے، صرف مجھ پر کر سکتی ہے۔ نہیں، مجھے سب پر اعتماد ہے، ریما بولی، درندے ہونے کے باوجود بھی تم لوگ انسانیت کے حدود کو نہیں پھلانگتے، میں تم لوگوں کو کسی حد تک مظلوم بھی سمجھتی ہوں۔ ریگم بالا میں تم جہاں کہو گی پہنچا دی جاؤ گی، فریدی نے کہا۔ میں جہاں کہوں گی، ریما نے حیرت سے دہرایا۔ کیوں اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حمید نے جواباً حیرت ظاہر کی، میں ریگم بالا تو کیا اس پورے ملک میں کسی کو نہیں جانتی، مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ دونوں مجھے کہاں لے جاتے۔ تب تو پھر یہی مناسب ہوگا کہ ہمارے ہی ساتھ رہو۔ دفتن فریدی نے بریک لگائے اور گاڑی تیز قسم کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ رک گئی۔ کیا ہے، حمید چونک پڑا اور پھر اسے وہ چیز نظر آ گئی۔ ایک آدمی سڑک پر اوندھا پڑا تھا اور اس کے سر کے آس پاس کی برف سرخ ہو رہی تھی۔ فریدی نے ہیڈ لیمپ بجھا دیے لیکن انجن بند نہ کیا۔ میرا خیال ہے، حمید نے کچھ کہنا چاہا، خاموش رہو۔ پھر فریدی بڑی احتیاط سے نیچے اترا تھا اور جھک کر تیزی سے دوڑتا ہوا خود بھی دھم سے لاش کے قریب جا گرا تھا۔ حمید بوکھلا گیا، کیا بے آواز فائر! فوری طور پر اسی خیال نے اسے بھی گاڑی سے باہر لا پھینکا۔ اب وہ سینے کے بل رینگتا ہوا فریدی کی طرف بڑھ رہا تھا، ریوالور ہولسٹر سے نکل آیا تھا۔ برف پر اس طرح رینگنا ہنسی کھیل تو نہیں، آدھی ہی مسافت بلائی جان بن گئی۔ دفتن اس نے فریدی کو پلٹتے دیکھا، وہ بھی اسی کی طرح رینگتا ہوا گاڑی کی طرف واپس آ رہا تھا۔ حمید نے اطمینان کا سانس لیا۔ قریب پہنچ کر فریدی آہستہ سے بولا، لاش، میرا خیال ہے کہ وہ ناصر کے ساتھیوں میں سے ہے، صبح موٹیل میں وہ غالباً اس کے ساتھ ہی تھا۔ اوہو، تو اسے بھی گولی لگی تھی؟ نہیں، وہ میرے ہاتھوں نہیں مرا، میں نے صرف دو فائر کیے تھے اور دو لاشیں تم وہاں دیکھ چکے ہو۔ اس کی کنپٹی پر گولی ماری گئی ہے اور جہاں لاش پڑی ہوئی ہے ٹھیک وہیں سے کوئی گاڑی ڈھلان میں اتری ہے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ پہلے ہمیں اس ٹرانسمیٹر سے چھٹکارا پانا چاہیے جو گاڑی میں موجود ہے۔ تم اسی طرح داہنی جانب والی ڈھلان اتر جاؤ اور اس راستے پر نظر رکھو جدھر وہ گاڑی گئی ہے۔ حمید اس کی ہدایت کے مطابق داہنی جانب والی ڈھلان میں رینگ گیا اور لاش کی پوزیشن ذہن میں رکھ کر داہنی جانب اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتا رہا۔ دفتن اس نے ایک سریلی سی چیخ سنی اور اچھل پڑا۔ گاڑی کے انجن کی آواز پہلے سے تیز ہو گئی تھی۔ او مردود، فریدی کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ حمید بوکھلا کر سڑک کی طرف جھپٹا۔ پھر فریدی اسے سڑک پر دو زانوں بیٹھا ہوا نظر آیا۔ قریب پہنچا تو ریما بھی نظر آئی جو برف پر اوندھی پڑی تھی لیکن گاڑی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ کیا ہوا؟ حمید قریب پہنچ کر خود بھی فریدی ہی کسی پوزیشن میں بیٹھتا ہوا بولا، اسے گاڑی سے دھکیل کر فرار ہو گیا۔ اکرام، اور نہیں تو کیا، چیانگ کائی شک، فریدی کے لہجے میں جنجلاہٹ تھی۔ وہ تو کمال ہو گیا۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، اکرام کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کرے یا کہہ لگائے۔ کیا تم ہوش میں ہو؟ فریدی نے جھک کر ریما سے پوچھا۔ ہاں آں، کانپتی ہوئی آواز ریما کے منہ سے نکلی تھی۔ اٹھنے کی کوشش کرو، گری ہوئی عورتیں خود سے نہیں اٹھ سکتی، حمید اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، لیکن فریدی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے، میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں۔ اتنے میں ریما خود ہی اٹھ بیٹھی۔ حمید کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ضروری نہیں تھا کہ سنسان سڑک پر جبکہ چاروں طرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی کوئی گاڑی بھی دکھائی دیتی۔ ایسے موسم عموماً رات کا سفر ملتوی ہی کر دیتے ہیں۔ یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، دفتن فریدی بولا اور ریما کا ہاتھ پکڑ کر داہنی ہی جانب کی ڈھلان میں اترتا چلا گیا۔ لیکن جگہ وہی منتخب کی تھی جہاں سے برف پر گاڑی کے پہیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ جب حمید بھی اس کے قریب پہنچ گیا تو بولا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ کہنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میری تقدیر ہے، حمید ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فریدی گاڑی کے پہیوں کے نشان سے لگ کر چل رہا تھا۔ ان دونوں نے اس کی تقلید شروع کر دی۔ میں تو اس طرح نہیں چل سکوں گی، ریما منمنائی۔ پھر کس طرح چل سکو گی؟ حمید نے پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ फरीदी सबसे आगे था। हमीद को इस वक्त रीमा पर कड़ी नजर रखनी थी। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था। बेजरर आदमी था, तुम क्यों नहीं गई उसके साथ? मेरे इनकार पर उसने मुझे गाड़ी से धकेल दिया। आखिर इनकार क्यों किया? अब मैं तुम दोनों के अलावा और किसी पर भी एतमाद नहीं कर सकती। तुमने अभी तक मेरे साथ कोई बदसलूकी नहीं की। दफतन फरीदी एक जगह रुक गया, उन्हें भी रुकना पड़ा। अब वो उसे बाईं जानिब एक जगह की बर्फ हटाते देख रहे थे। क्या बात है बॉस? हमीद ने आगे बढ़कर पूछा। मेरा ख्याल है कि हमें रात बसर करने के लिए कोई जगह तलाश करनी चाहिए। बर्फ के नीचे बको मत, मैं कदम रखने के लिए जगह देख रहा हूँ, कहीं किसी गड़े में ना गिर जाए। फिर हमीद भी उसके करीब बैठकर बर्फ हटाने लगा था और कुछ देर बाद वो बैठे ही बैठे बाईं जानिब खिसक रहे थे। नासिर ने गाड़ी नीलम सराय के सामने रोकी। ये भी शतीरों ही से बनाई हुई एक इमारत थी। खिड़कियां और दरवाजे सब बंद थे, कहीं किसी दरस से भी रोशनी नहीं दिखाई देती थी। उसने सदर दरवाजे पर ठोकरें मारनी शुरू की और बिलाखिर कोई दरवाजा खोलकर धाड़ा, कौन है? बेखबर हो जाते हो हरामी, नासिर ने उसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए कहा। माफ करना साहब, मेले को चेले से आदमी ने कहा और अपनी बाईं आंख का कीचड़ साफ करने लगा। नासिर आगे बढ़ता चला गया। साफ के इतबार से ये जगह इकराम के मोटेल से मुख्तलिफ नहीं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ काउंटर के पीछे फर्श से छत तक मुतादद खानों में कई किस्म की शराबों की बोतलें भी चुनी हुई थीं और काउंटर पर बैठा हुआ आदमी इकराम की तरह ढीला ढाला नहीं मालूम होता था। न सिर्फ जिस्म की बनावट के एतबार से बल्कि आंखों में पाई जाने वाली तवानाई के बिना पर भी वो खासा जानदार लगता था। ये तुम जंगलीपन क्यों शुरू कर देते हो? उसने गुर्राकर नासिर से कहा। अभी रात ही कितनी हुई है कि दरवाजा जकड़ दिया गया, नासिर ने काउंटर के करीब पहुंचकर सामने लगी हुई बोतलों का जायजा लेते हुए कहा। नहीं, ओदम नहीं चाहता, दूसरा आदमी गुर्राया। पहले तो नासिर ने उसे घूरकर देखा, फिर खामखा हंस पड़ा। चलो शराब उठाओ, उसने कहकहे को फौरी तौर पर दबाकर कहा। काउंटर पर बैठे हुए आदमी ने स्याह रंग की बोतल एक खाने से निकाल कर उसके सामने काउंटर पर रख दी। इस अंदाज में बेजारी का इजहार भी शामिल था। बोतल की कीमत अदा करके उसने दो गिलास तलब किए और उन्हें उठाए हुए एक मेज तक आया जहां एक सफेद फॉर्म आदमी पहले ही से बैठा हुआ था। यहां कई मेजों के गिर्द लोग नजर आए, बड़े बड़े आतिशदानों में कोयले दहक रहे थे। हेलो लेकी, नासिर ने उसे अपनी तरफ मतवज्जो किया। हेलो, गैर मुल्की का लहजा बेहद खुश्क था। शायद तुम देर से प्यासे हो, नासिर ने एक गिलास उसके सामने रखते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, तो फिर क्या तुम मेरी दावत रद्द कर दोगे? मैंने ये तो नहीं कहा। नासिर उसके सामने रखे हुए गिलास में शराब उंडेलने लगा, लेकिन वो उसे तेज नजरों से घूरे जा रहा था। जैसे ही नासिर दोबारा उससे मुखातिब हुआ, देखने का अंदाज यकलख्त बदल गया। अब उसकी आंखों में नरमी थी। फिर नासिर ने दो तीन घूंट लेने के बाद गुफ्तगु का आगाज किया था। मैंने अपने तीन साथी गंवाए हैं, वो ठंडी सांस लेकर बोला। मुझे इतला मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ दो आदमियों के, खुश्क लहजे में कहा गया। एक को खुद मैंने मौत के घाट उतारा है। क्यों? गैर मुल्की की भवें तन गईं। उसने लीडर के हुक्म से सरताबी की थी, नीलम सराय की तरफ आने से इनकार कर दिया था। बहुत अच्छे, तब तो उसे मरना ही चाहिए था। गैर मुल्की के लहजे की खुश्की रफा हो गई। अब वो हर घूंट के बाद होंठ चाटने लगता था। अब मुझे क्या करना है? आराम, दो तीन दिन आराम से यही गुजारो। आखिर उसे खत्म ही क्यों नहीं कर दिया जाता? इस तरह घेर कर पकड़ने की क्या जरूरत है? वो हमें खजाने की तलाश में मदद दे सकता है, उसके बाद हम उसे खत्म कर देंगे। सुनो अब उसके साथ एक गैर मुल्की लड़की भी है, बड़ी खूबसूरत, मैं जानता हूँ।
लिक्रास, कम अज कम वो लड़की ही हासिल कर ली जाए। वो दो बुध बख्शुओं के हमरा वहाँ आई थी। क्या तुम जानते हो कि वो लड़की भी हमारे लिए बेहद कारामत साबित होगी? नहीं, मैं क्या जानूं? वो तीनों भी खजाने की तलाश में थे। एक बख्शु फरीदी के हाथों मारा गया और दूसरा गालिबन इमारत ही में जलकर मर गया। देखो दोस्त लिक्रास, नासिर ने आगे झुककर आहिस्ता से कहा, अगर खजाने की बात फैल गई तो बहुत बुरा होगा, हम दुश्वारियों में पड़ जाएंगे। जो लोग इस चक्कर में हैं वो भी यही सोचते हैं, लिहाजा खजाने की बात फैल नहीं सकती। अगर उस लड़की ने फरीदी को बता दिया तो कोई किसी अजनबी को ऐसी बातें नहीं बताया करता। अच्छा तो यही बता दो कि फरीदी ने बख्शु को क्यों मार डाला? उन दोनों ने उसके नाथ कैप्टन हमीद पर हमला किया था। वो गालिबन समझे थे कि हमीद लड़की को फांसने की कोशिश कर रहा है। उसने यकीनन कोशिश की होगी, कोई लड़की उसके करीब से सही और सलामत नहीं गुजर सकती। कुछ भी हो, उनके दरमियान झगड़े की वजह लड़की ही बनी थी। और सुनो, वो बख्शु जो फरीदी के हाथों मारा गया था, वो जुमला पूरा किए बगैर फिर पीने लगा। नासिर उसकी तरफ मतवज्जो था। जब उसने देखा कि लिक्रास ने खामोशी ही इख्तियार कर ली है तो बोला, तुम बख्शु की लाश के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ, कुछ नहीं, लिक्रास उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, मैंने उसे मुतहय्यर करने के लिए इस बख्शु की लाश गाड़ी के डक्के में रख दी थी। कैप्टन हमीद ने उसे देखा और इमारत की तरफ भाग गया। मैंने लाश फिर डक्के से निकाल ली और बाद में उसे भी जलती हुई इमारत में झोंक दिया गया। मुझे अफसोस है कि बहुत अच्छा मोटेल तबाह हो गया, नासिर ठंडी सांस लेकर बोला। फिर दफ्तर चौंक कर लिक्रास को घूरने लगा। क्या बात है लिस्ली? लिस्ली कहाँ गई? मेरा ख्याल है कि वो भी जल मरी होगी। क्यों? वो तो हमारी शरीक थी। पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन यह हकीकत है कि वो बाहर नहीं निकली थी। अब तुम कहाँ जाओगे? रात यहीं गुजारूंगा। फिर वो दोनों खामोशी से पीते रहे थे। बिलाखिर वो एक छोटा सा घर तलाश कर लेने में कामयाब हो गए थे जहाँ रात गुजार सकते। हमीद तो फौरन ही ढेर हो गया था और रीमा बैठकर हांफने लगी थी। यहाँ कितना अंधेरा है, वो भराई हुई आवाज में बोली। अंधेरा तुम्हें खा न जाएगा, चुपचाप बैठी रहो, हमीद ने कहा। वो सोच रहा था कि आखिर फरीदी ने इकराम के इस तरह भाग निकलने पर किसी किस्म की रायजनी क्यों नहीं की। भूख लग रही है, दफतन वो कराहा। कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, फरीदी बोला। लाइए दो चार कारतूस ही, निगल लूं। बिल्कुल मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, फरीदी भराई हुई आवाज में बोला। ओहो, याद आया, रीमा के थैले में भुना हुआ अनाज था। अगर वो थैले समेत गाड़ी से धकील गई होगी तो आखिर इकराम को क्या हो गया था? मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा खाइफ था, जहन्नम में जाए, हमीद पेट पर हाथ मारकर कर रहा और फिर रीमा से उसके थैले की खैरियत दरियाफ्त करने लगा। वो भी गाड़ी ही में रह गया। वो रूहान सी होकर बोली, मेरा सूटकेस भी गया, अब मैं बिल्कुल मुफलिस हूँ। फिक्र न करो, सुबह हम यकीनन किसी न किसी बस्ती में पहुँच जाएंगे और तुम्हें यतीमों लावारिस जाहिर करके तुम्हारे नाम पर चंदे की अपील करेंगे। अगर मैंने खुद को यतीम या लावारिस जाहिर करके कुछ करना चाहा तो लोग कहेंगे, चल हट, जाकर मेहनत मजदूरी कर, लेकिन तुम्हें ओह, हर एक ये चाहेगा कि तुम उसकी बहन या बेटी बन जाओ, करेंसी की बारिश हो जाएगी तुम पर। मैं भीख नहीं मांगना चाहती, मैं भी मजदूरी कर सकती हूँ। कौन करने देगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लोग यही चाहेंगे कि तुम पल भर में करोड़पति बन जाओ। कौन करने देगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लोग यही चाहेंगे कि तुम पल भर में करोड़पति बन जाओ। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। इसे क्या करना चाहिए, हमीद ने उर्दू में फरीदी से पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। क्या आप तशरीफ नहीं रखते जनाबे आली, उसने फिर हाँक लगाई, फिर भी जवाब में कुछ ना सुन सका। बिल आखिर टॉर्च रोशन की, फरीदी का कहीं पता ना था। क्यों, तुम्हारा साथी कहाँ है, रीमा हकलाई, लेकिन हमीद कुछ ना बोला। कुछ देर बाद वो फिर डरी डरी सी आवाज में बोली, तुम कहाँ हो? अगर मुझसे पूछ रही हो तो मैं वही हूँ जहाँ पहले था, हमीद ने कराह कर कहा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं फाका कशी की आदी हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन तुम्हारा साथी कहाँ गया? हो सकता है खाने की तलाश में गया हो। इस वक्त पहाड़ी लूमड़ियाँ बकसरत मिल जाएंगी। लूमड़ियाँ, तुम लोग लूमड़ियाँ खाते हो? अगर छिपकलियाँ ना मिल सके तो खानी ही पड़ती है। छिपकलियाँ, रीमा की घटी घटी सी आवाज अंधेरे में गूंजी। टार्च टार्च रोशन करो, टार्च तो नहीं है मेरे पास। अरे अरे, यानी के रीमा उस पर आ गिरी थी और बुरी तरह हाँप रही थी। क्या हुआ, क्या बात है? हमीद बौखलाकर उठ बैठा। मम्मा, मुझे छिपकलियों से खौफ मालूम होता है, तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा छिपकलियों का? मुझे डराओ नहीं, जो लोग सुकून की तलाश में हो उनकी राह में अमूमन छिपकलियां ही हायल होती हैं। चुपके से जिंदगी में दाखिल हुई और उम्र भर सरसराती रही, फिर कब्र ही में पहुँच कर उनसे छुटकारा होता है। सुना है बाज छिपकलियां कब्र में भी कूद जाती हैं। तुम इतनी बकवास क्यों करते हो? मेरी खोपड़ी में गलती से औरत का भेजा रख दिया गया था, वो कुछ ना बोली। हमीद ने सोचा शायद उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, सर्दी तो खुद उसे भी लग रही थी। वो चंद लम्हे उससे लगी बैठी कांपती रही, फिर बोली, तुम लोग मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे। उन दोनों से मेरा पीछा छुड़ा दिया, लेकिन अब तुम खुद किस चक्कर में फंस गए, और वो बेचारी औरत किस बला का शिकार हुई? वो खुश्की की जोंकों का शिकार हुई थी, जो हजारों की तादाद में पाई जाती हैं। कौन लाया था? काश हमें मालूम हो सकता। बताओ ना, वो लोग कौन हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? तुम ही बताओ के तुम्हारी मर्सिडीज में ट्रांसमीटर की मौजूदगी का क्या मतलब था? गाड़ी मेरी मलकियत नहीं थी, मैं नहीं जानती कि उन्होंने कहाँ से और क्यों कर फराहम की थी। मुझे खजाने वाली बात में किसी कदर सच्चाई नजर आती है, खुली हुई बकवास थी। बख्शू ने किसी ऐसी तहरीर का जिक्र किया था जो चमड़े पर थी, मैंने उससे इनकार तो नहीं किया। तुमने सिरे से उसे तस्लीम ही नहीं किया था, बेशक ऐसी एक तहरीर मेरे पास थी, मैं उसे पढ़ना चाहती थी। उन दोनों ने मेरी ये मुश्किल आसान कर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे हरगिज ये नहीं बताया था कि उसका ताल्लुक किसी खजाने से है। लेकिन आखिर तुमने इसी वक्त ऐसी किसी तहरीर का इतराफ क्यों नहीं कर लिया था? लेकिन आखिर तुमने उसी वक्त ऐसी किसी तहरीर का इतराफ क्यों नहीं कर लिया था? बात खजाने की हुई थी, तहरीर की नहीं। और फिर मैं तो ऐसे हालात में गुजरती रही थी कि मुझे अपने हवाज़े खमसा पर एतमाद ही नहीं रह गया था। यकीन करो, मुझे कुछ भी तो याद नहीं। मेरी नजरों में तो सिर्फ उस औरत की तड़प थी और कानों में उसकी चीखें। अब खामोश हो जाओ, मुझे अपने मैदे की आवाज़ सुनने दो। मुझे हैरत है कि दिन भर की भूख से लोग इतने निढाल क्यों हो जाते हैं। मैं तो कई दिन तक कुछ नहीं खाती पीती, इतनी देर से सर जो खा रही हो। क्या तुम्हें खामोशी से घुटन नहीं होती? खामोशी तो मेरी रफीका हयात है, लिहाजा वो किसी औरत की सौकन ही कहलाएगी, इसलिए शादी नहीं की मैंने। झूठ तुम्हारी पेशानी पर तहरीर है और अंधेरे में भी चमक रहा है। मैं सच कह रहा हूँ कि अगर इस वक्त भूखा ना होता तो तुम में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेता। तुम अपना दिल छोटा ना करो। दोनों देर से पी रहे थे, लेकिन उनके हवास रुखसत नहीं हुए थे। उनके चेहरों पर तवानाई के आसार दूर से भी नजर आ सकते थे। दफतन नासिर ने लिकरा से पूछा, वो बेहोश आदमी अब कहाँ है?
जिसे हमने मोटेल से उठाया था। तुम्हें ऐसी बातों से कोई सरोकार ना होना चाहिए जिनका तुम्हारे कामों से कोई ताल्लुक ना हो। इस टीम की सरबराही में ही तो कर रहा था। इस सिलसिले में तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। नासिर ने शानों को जुम्बश देकर कहा, जहन्नम में जाए। अब वो खामोश होकर सिगरेट सुलगा रहा था। लिक्रास ने ओवरकोट की जेब से रोल किया हुआ चमड़े का एक शीट निकाला और उसे मेज पर फैलाने लगा। ये क्या है? नासिर चौंक कर आगे झुका। ये इस बख्शु के पास से बरामद हुआ था जिसे फरीदी ने मार डाला था। ये है क्या? पता नहीं, लेकिन ये तहरीर बहुत पुरानी मालूम होती है। बस ये समझ लो कि उस दौर में कागज नहीं था, चमड़े पर लिखाई होती थी। जरा मैं भी तो देखूं, नासिर ने उसे अपने आगे खिसकाते हुए कहा। चंद लम्हे उसे गौर से देखता रहा, फिर बोला, यकीनन ये बहुत पुरानी तहरीर है, लेकिन मैं इस रस्मुल खत के बारे में कुछ नहीं जानता खैर देखा जाएगा, लिक्रास बोला और उसे दोबारा रोल करके जेब में डाल लिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर लिक्रास नासिर की आंखों में देखता हुआ बोला, वाकई तुम बहुत दिलेर आदमी हो, पार्टी का लीडर तुम पर फखर करता है। 10 साल पहले मैं बहुत ज्यादा बुजदिल था, नासिर भराई हुई आवाज में बोला, यकीन नहीं आता, ये हकीकत है। बंदूक की आवाज सुनकर मेरा दम निकलता था। बड़ी अजीब बात है, क्यों कर यकीन कर लिया जाए। मुझे झंझलाहट ने दिलेर बनाया है। इस पेशे में आने से पहले मैं बहुत दौलतमंद था और ये दौलत मुझे विरसे में मिली थी। तब अन बहुत नेक था, अलबत्ता दोस्तों की भीड़ अपने गिर्द देखना पसंद करता था। हल्का अहबाब बहुत वसीर था। उन दोस्तों में ज्यादातर ऐसे थे जो किसी न किसी तरह मुझसे माली फायदा उठाते रहते थे। मैं था कहकहों का रसिया, अपनी महफलों की जिंदगी बरकरार रखने के लिए बेदरे खर्च करता था। रफ्ता रफ्ता मेरी माली हालत बिगड़ने लगी। तब मुझे होश आया और मैंने उन दोस्तों से अपनी बड़ी बड़ी रकूमात का मुतालबा करना शुरू कर दिया जो उन्होंने बतौर कर्ज मुझसे ले रखी थी। इस वक्त तक मैं कमवारा था, इरादा ही नहीं था शादी करने का। मैं जानता था कि मुझ जैसे लाओबाली आदमी के साथ कोई लड़की खुश नहीं रह सकती, लेकिन इन मकरूज दोस्तों में से एक ने अपनी लड़की जबरदस्ती मेरे सर मंड दी। लड़की कमसिन थी, मैंने उसे गोदों में खिलाया था। बस ये समझ लो कि मैं उस वक्त 40 के करीब था और वो सिर्फ 13 साल की। बहरहाल ये चक्कर महज इसलिए चलाया गया था कि मैं उस लड़की के बाप से उस बड़ी रकम का मुतालबा ना करूं। क्या तुम्हें नशा हो रहा है? दफतन लिक्रास ने उसे टोका। क्या मतलब? तो क्या उस 13 साल की लड़की ने तुम्हें दिलेर बना दिया था? नहीं, नासिर मेज पर घूंसा मार कर चीखा। खामोशी से सुनते रहो, मैं दिल का बुखार निकालना चाहता हूँ। जब वो 18 साल की हुई तो अदालत में जा खड़ी हुई और तनसीख निकाह की दरख्वास्त पेश कर दी। ओहो, वो कामयाब हो गई और अपनी पसंद के एक नौजवान के साथ चल दी। ट्रेजिडी, वो कभी ऐसा ना करती। अगर मैं मुफलिस ना हो गया होता, मुझ में और कोई कमी ना थी, क्या मैं 50 साल की उम्र में भी तुम्हें बूढ़ा लग रहा हूँ? हरगिज नहीं, लिक्रास बोला, तुम्हारे बाजू सीसा पिलाए हुए हैं। मैंने सब कुछ उस पर लुटा दिया था, मैं उसे बहुत चाहता था, वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। अब मैं समझा, लिक्रास तवील सांस लेकर बोला, उसी झल्लाहट ने तुम्हें खूनी बना दिया। यकीनन मैं आज भी उसकी तलाश में हूँ, जहाँ भी हाथ आ गई कीमा करके रख दूंगा। तुम बहुत शोर मचा रहे हो, दफतन काउंटर पर बैठे हुए आदमी ने नासिर को मुखातिब करके कहा। नासिर उछलकर खड़ा हो गया। ओह क्या बात है, लिक्रास भी उठता हुआ बोला, मैं उसे सबक दूंगा। बात क्या है? बकवास कर रहा है, कुछ भी हो तुम्हें मसलहतन खामोश रहना चाहिए, झगड़ों को किसी और वक्त पर उठा रखो। काउंटर पर बैठा हुआ आदमी भी उसे घूरे जा रहा था।
ठीक उसी वक्त किसी ने सदर दरवाजे पर दस्तक दी और काउंटर पर बैठे हुए आदमी ने उसकी तरफ देखा जिसने नासिर के लिए दरवाजा खोला था। दरवाजा खुलने पर एक आदमी लड़खड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ओहो, लिक्रास मुतरबाना अंदाज में उठकर उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, ये क्या हुआ? मैं जख्मी हूँ, वो कराहता हुआ बोला, मेरी रान में गोली लगी है। नासिर ने उसे सहारा दिया और उसे मेज तक लाने में लिक्रास ने भी नासिर का हाथ बटाया। काउंटर पर बैठा हुआ आदमी भी उनके करीब आ गया था। दफतन जख्मी नासिर की तरफ हाथ उठाकर बोला, कोई तुम्हारी गाड़ी ले गया, मैंने उसे ललकारा था, उसने फायर कर दिया। नासिर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि लिक्रास बोला, ठहरो। उधर काउंटर वाला कह रहा था, लेकिन मैंने तो फायर की आवाज नहीं सुनी, मेरा ख्याल है किसी ने भी ना सुनी होगी। नासिर दरवाजे के करीब रुक गया था। लिक्रास ने काउंटर वाले को जख्मी आदमी से मतलब कुछ हिदायत दी और नासिर की तरफ बढ़ा। जल्दी मत करो, वो उसके शानी पर हाथ रखकर आहिस्ता से बोला। फितरतन वो ठंडे दिमाग का आदमी मालूम होता था। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो साइलेंसर लगा हुआ लॉन्ग रेंज का कोई असलहा इस्तेमाल करता रहा है, नासिर ने तल्ख लहजे में कहा। क्या तुम अपने साथी की लाश सड़क पर ही छोड़ आए थे? हाँ, कंठपुट्टी पर फायर किया था और धक्का दे दिया था। बुनियादी गलती, लाश ने उसका रास्ता रोका होगा, लिहाजा नीलम सराय के रास्ते पर उसका लग जाना हैरत की बात नहीं। मुझे ट्रांसमीटर पर हिदायत मिली थी के नीलम सराय जाऊं और उस गाड़ी में भी ट्रांसमीटर मौजूद था जिसमें वो लोग सफर कर रहे थे। लीडर को अहमक ना समझो, जब वो तुमसे गुफ्तगू कर रहा हो तो समझ लो कि दुनिया का कोई दूसरा ट्रांसमीटर उसकी आवाज को रिसीव नहीं कर सकता। चलो बाहर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो गाड़ी लेकर कतई तौर पर चला गया हो, नासिर पुरतश्वीश लहजे में बोला। बाहर अंधेरा है, गाड़ी करीब ही कहीं छोड़कर खुद पलट आया हो। क्या हकीकतन वो ऐसा ही है? मेरे या तुम्हारे तसव्वुरात से भी ज्यादा, ये सारा इलाका उसका देखा भाला है। लिक्रास कुछ कहते कहते रुक कर फिर जख्मी की तरफ देखने लगा जिसकी मरहम पट्टी हो रही थी। जख्मी दूसरों से कह रहा था, मैं नहीं जानता वो कौन था, फायर की आवाज तो मैंने नहीं सुनी थी। कुछ देर बाद ख्याल आया था कहीं गोली ना चली हो। हाँ हाँ, साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर की गोली। दो मुसल्ला आदमी जो उस वाके पर बाहर जाना चाहते थे उसकी पूरी बात सुनकर जहाँ थे वहीं रह गए। लिक्रास भी उसी मेज की तरफ पलट आया और झुककर गोली का जख्म देखने लगा। भूख में नींद कहाँ, लेकिन हमीद को रीमा पर सचमुच हैरत हुई। वो बड़े मजे से खराटे ले रही थी। हमीद ने अपना ओवरकोट भी उस पर डाल दिया था और खुद दांत भींचे अकड़ू बैठा दिल ही दिल में सिर्फ अपने आप को गालियां दे रहा था। अपने आप को यूं गालियां दे रहा था कि ये बला खुद ही तो गले लगाई थी जिसने ओवरकोट तक उतरवा लिया था। सर्दी थी के जहन्नम में ठंडक का ख्वाब, तो क्या ये लड़की इसी तरह उनके सरों पर मुसल्लत रहेगी? फरीदी ने खुद ही उसके लिए यह मौका फराहम किया था, खुद ही ये जाहिर करने की कोशिश की थी कि वो उन बख्शुओं के फरेब खुर्दा है। बस तो फिर उस आसेब से छुटकारा कहाँ जो खुद ही अपने ऊपर मुसल्लत किया जाए। वो सोचता और ताव खाता रहा कि शायद इसी तरह खून में कुछ गर्मी आए और जबड़े ढीले पड़े। दफतन वो चौंक पड़ा, गार के दहाने के करीब हल्की सी रोशनी दिखाई दी थी। सर्दी का एहसास एक लम्हे के लिए जहन से महव हो गया। वो बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर निकालकर दहाने की तरफ झपटा था। हमीद, किसी ने आहिस्ता से उसे आवाज दी। वो कुछ न बोला, रिवॉल्वर की नाल दहाने की तरफ थी। फिर जब दूसरी आवाज दी गई तो एहसाब का तनाव फौरी तौर पर कम हो गया। आवाज फरीदी ही की थी, वो बाहर निकला। क्या वो जाग रही है? उसने पूछा। मैं भी सो रहा होता अगर मेरा ओवरकोट खुद मेरे जिस्म पर होता। चलो अच्छा ही हुआ, आप बराह करम अंदर तशरीफ ले चलिए, मैं दांत बजाना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो, तुम्हें अभी यहाँ से रवाना हो जाना है, पैदल नहीं गाड़ी है, सीधे रेगम बाला जाओ और उस बला का क्या होगा, वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगी। और आप अब इस ओर का सिलसिला खत्म करो, सिर्फ तुम दोनों जाओगे। रेगम बाला में कहाँ जाऊँगा, मेरे लिए वो जगह बिल्कुल नहीं होगी।
वहाँ दो बहुत अच्छे होटल हैं, किसी एक में कयाम करना।
क्या वो सड़क सीधी रेगम बाला ही जाती है?
बिल्कुल, और ये भी जहन नशीन करो कि तुम वहाँ सुबह से पहले ना पहुँच सकोगे।
आप भी जहन नशीन कर लीजिए कि मैं आपकी तरह फौरी तौर पर गाड़ी रोककर छलांग नहीं लगा सकता, और उस बला को बगल में दबा कर छलांग लगाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन होगा।
जो गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए मुहैया की है उसमें भी खुदकार ट्रांसमीटर मौजूद है, अगर तुमसे गाड़ी रोकने के लिए कहा जाए तो फौरी तौर पर रोक देना। पहले भी तुम मेरे साथ नहीं कूदे थे, फिर तुम्हारा क्या बिगड़ा था?
उन्हें खुसूसियत से आपकी तलाश थी।
थी नहीं बल्कि अब भी है, बेफिक्र रहो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं न सिर्फ कुर्बानी का बकरा हूँ बल्कि एक बकरी भी मुझ पर सवार करा दी गई है।
वक़्त न जाया करो हमीद, आओ मैं तुम्हें गाड़ी दिखाऊं।
वो फिर बाहर निकले थे, फरीदी उसे उस जगह लाया जहां एक कार खड़ी थी।
कहां से हाथ लगी?
मेरा अंदाजा दुरुस्त था कि नासिर उधर से नीलम सराय ही गया होगा।
नीलम सराय? हाँ, उसे भी मोटेल ही समझ लो, यहां से ज्यादा दूर नहीं है, और ये गाड़ी नासिर की है।
तब फिर वो भी इस गाड़ी की तलाश में इधर आ सकते हैं,
शायद ही कोई अंधेरे में बाहर निकलने की कोशिश कर सके, क्योंकि मैं एक आदमी को जख्मी कर आया हूँ।
अच्छा बस मैं चला।
हमीद उसको उसी से देखता रहा जिधर से गाड़ी लाया था।
उसने ठंडी सांस ली और हथेली से पेशानी थपकता हुआ गार के दहाने की तरफ चल पड़ा।
नई दुश्वारियाँ। दूसरे दिन मतला साफ था, सूरज अपनी तमाम तर ताबनाकियों समेत मशरिक से उभरा था और बर्फ पिघलने लगी थी। नीलम सराय में सुबह ही से हंगामा बरपा था, किसी ने रात उसके स्टोर में नकब लगाई थी और डिब्बे में महफूज अगजिया की खासी बड़ी मकदार निकाल ले गया था। नीलम सराय का मालिक आज पेशावर शिकारियों को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उस चोरी के भी वही जिम्मेदार हों। हालांकि पिछली रात उस जख्मी शिकारी की मरहम पट्टी उसी ने की थी जो नामालूम आदमी की गोली का निशाना बना था। लिकरात ने उसे समझाने की कोशिश की तो वो बफर कर बोला, देखो मिस्टर, तुम गैर मुल्की हो, अपने आदमियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें भी मशवरा दूंगा कि अगर तुम्हें शिकार का शौक है तो इन कमीनों का साथ छोड़ दो। माई डियर सरदार जमन, लिकरास नरम लहजे में बोला, हमारा कोई आदमी अपने ही किसी आदमी को क्यों जख्मी कर जाता? यकीन करो कि यह हरकत किसी दूसरी पार्टी की है। उन्होंने नकब लगाई, सामान निकाला और उसे नासिर की गाड़ी पर लाद कर फरार हो गए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ कौन है जो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देख सके? यही तो हम देखेंगे कि वो कौन है। मेरी पार्टी का एक आदमी जख्मी हुआ है, मेरा खसारा कौन पूरा करेगा? और हमारे खसारे के मुतल्लिक क्या ख्याल है? हम तुम्हारे गाहक हैं, हमारी गाड़ी यहीं से गायब हुई है, तुम्हारा चौकीदार कहाँ मर गया था?
सरदार जमन ढीला पड़ गया। नासिर पिछली रात इतनी पी गया था कि फिर उसे अपनी सुध ही ना रही थी और अब वो भी अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। अगर वो उस वक्त जाग रहा होता तो बात बढ़ जाती, सरदार जमन से जरूर उलझ पड़ता। लिकराज सरदार जमन को किसी कदर ठंडा करने के बाद अपने कमरे में आया, खिड़की खोलकर दूरबीन उठाई और सामने दूर तक देखने की कोशिश करने लगा। पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ चमक रही थी और हद नजर तक हू का आलम था। लिकराज के चेहरे पर तश्वीश के आसार नजर आए, उसने दूरबीन एक तरफ रख दी और खिड़की के करीब ही खड़ा किसी सोच में गुम रहा। कुछ देर बाद वो चौंककर दरवाजे की तरफ मुतवज्जो हो गया, कोई दस्तक दे रहा था। आ जाओ, वो भराई हुई आवाज में बोला।
दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला नासिर था। उसके चेहरे पर पिछली रात की बसियार नोशी अजीब तरह की वेशत छोड़ गई थी। ये कैसा हंगामा है, उसने लिखराज से पूछा। तुम्हारी गाड़ी के साथ ही सरदार जमन का कुछ सामान भी गायब है। किसी ने पिछली रात स्टोर में नकब लगाए थे। नकब? हाँ, वो सिर्फ खाने पीने की चीजें ले गया है। फरीदी, यकीन के साथ तो नहीं कहा जा सकता, लिखराज उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। सरदार जमन के बयान के मुताबिक ये पहला वाकया है। फरीदी और सिर्फ फरीदी, खाने पीने की चीजें सिर्फ वही ले जा सकता है। दफतर लिखराज के चेहरे की नरमी गायब हो गई। नासिर ने उसे महसूस किया लेकिन कुछ बोला नहीं। तुम अंदाजा नहीं कर सकते कि तुमसे कितनी बड़ी हमाकत सरजद हुई है, लिखराज ने कुछ देर बाद खुश्क लहजे में कहा। ठहरो, नासिर हाथ उठाकर बोला, मैं इस वक्त खुद को चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद गुफ्तगू होगी। फिर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा था और फर्श पर जोर जोर से पांव मारता हुआ बाहर चला गया था। दरवाजा भी जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ था। लिखराज बंद दरवाजे को घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर उसे बोल्ट कर दिया। फिर उसने जेबी ट्रांसमीटर निकाला और उसका स्विच ऑन करके मुंह के करीब लाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बोला, हेलो निकी, हेलो निकी, निकी इट इज लिखराज। बार बार यही अल्फाज दोहराते रहने के कुछ देर बाद उसने किसी की आवाज सुनी। यस, इट इज निकी सर। व्हाट न्यूज? जो गाड़ी नीलम सराय से चुराई गई थी इस वक्त रीगमबाला की तरफ जा रही है, लेकिन उसमें फरीदी नहीं है। फिर कौन है? कैप्टन हमीद और एक सफेद फॉर्म लड़की। पीसी 8888 नंबर की मर्सिडीज की तलाश जारी रखो, वो फरीदी के कब्जे में होगी। बहुत बेहतर जनाब, एक बार फिर सुनो, गाड़ी का नंबर है पीसी 8888। मैंने नोट कर लिया है जनाब, ओवर एंड ऑल। लिखराज ने स्विच ऑफ कर दिया। उसकी आंखों में गहरी तश्वीश के आसार थे। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। लिखराज ने बोल्ट गिरा कर दरवाजा खोला। सामने नासिर खड़ा था। अब उसके चेहरे पर बहाली नजर आ रही थी। वो कमरे में दाखिल होकर बोला, अब बात करो। लीडर का ख्याल है कि तुमने गफलत बरती है, लिखराज ने खुश्क लहजे में कहा। आखिर किस तरह? इस मुहिम के आगाज ही पर तुम्हें हिदायत दी गई थी कि फरीदी एक पल के लिए भी आंखों से ओझल ना होने पाए। मुझे याद है, फिर ऐसा क्यों हुआ? अभी तक कोई ऐसी ऐनक ईजाद नहीं हो सकी जो आदमी को उल्लू बना दे। क्या मतलब? माय डियर लिखराज, इसका मतलब ये है कि आदमी अंधेरे में भी रोजे रोशन की तरह देख सके। कुछ भी हो, इससे दुश्वारियां बढ़ जाएंगी। सुनो दोस्त, मैं शिकारी हूँ या शिकार करता हूँ या शिकार हाथ से निकल जाता है, तीसरी बात हमारी जिंदगी में कभी नहीं होती। ठीक कहते हो, वो नासिर को घूरता हुआ बोला। इस मुहिम के सिलसिले में तुम्हारा इंतखाब मौजू नहीं था। अगर लीडर का हुक्म होता तो मैं फरीदी को गोली मार देता। महज निगरानी के लिए तुम किसी कुत्ते का भी इंतखाब कर सकते थे। खैर खैर, अब उसे भूल जाओ, लिखराज मुस्कुराया। अब क्या करना है? फिलहाल आराम। समझा, गोया अब मुझे यहाँ नजरबंदी की एक मुद्दत भी गुजारनी पड़ेगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बहलाने की कोशिश ना करो। अच्छा तो फिर जहाँ दिल चाहे चले जाओ, लिखराज का लहजा नरम ही था। ये बात है, नासिर लिखराज की आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया। इस हरकत पर लिखराज उसे टटोलने वाली नजरों से देखने लगा था। दफतन वो हंस पड़ा और बोला, जानते हो वो गाड़ी इस वक्त कहाँ है जो पिछली रात तुम्हारे कब्जे में थी? कहाँ है? रिगम्बाला की तरफ जा रही है। फरीदी, नहीं, उसका असिस्टेंट और वो लड़की जिसका जिक्र तुमने किया था। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये उसकी बहुत पुरानी टेक्निक है। जब वो अपने असिस्टेंट का साथ छोड़ जाए तो समझ लो कि झंड से बिछड़े हुए भेड़िये की तरह खौफनाक हो जाएगा। फिर मैंने कुछ देर पहले यही बात कही थी, तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा था? लिकरास तवील सांस लेकर बोला। लीडर यही चाहता था कि वो नजरों से ओझल ना होने पाए और हम उसे घेर कर पकड़ लें। नासिर कुछ ना बोला। लिकरास ने अलमारी खोल कर शराब निकाली और दो गिलास मेज पर रख दिए। इस तरह उसे मजीद दोस्ताना माहौल पैदा करने में आसानी हो गई। फिर वो खामोशी से पीने लगे थे। कुछ देर बाद नासिर बोला, अगर फरीदी उस गाड़ी में नहीं है तो फिर इन्हीं अतराफ में होगा। हमें मोहतात रहना चाहिए। हमीद ने एक जगह गाड़ी रोक दी। वो इस इलाके से कभी के निकल आए थे जहाँ पिछली रात बर्फबारी हुई थी, लेकिन रिगम्बाला हनवस दिली दो रास्त की कहानी बन कर रह गया था। गाड़ी रुकते ही रीमा चौंक कर बोली, क्या हम रिगम्बाला पहुँच गए? अगर इस वीरानी का नाम रिगम्बाला है तो यकीनन पहुँच गए होंगे, हमीद ने झिझलाकर जवाब दिया। सूरज तुलू हो चुका था और हमीद की आंखें नींद से बोझल होती जा रही थी। पूरी रात सफर ही में तो गुजरी थी। रीमा होंठ भींचे खामोश बैठी रही। मैं पिछली सीट पर सोने जा रहा हूँ, हमीद आंखें फाड़ फाड़ कर उसे घूरता हुआ बोला। अब तुम स्टीयरिंग संभालो। हरगिज नहीं, मैं सिर्फ अपने देखे भाले रास्ते ही पर गाड़ी चला सकती हूँ। तो फिर जहन्नम में जाओ, हमीद ने कहा और दरवाजा खोल कर नीचे उतर आया। गाड़ी उसने पहले ही बाईं जानिब वाली ढलान में उतार कर एक मुस्तहिल जगह पर रोकी थी। पिछली सीट पर बैठते वक्त उसने रीमा से कहा था, डक्के में गोश्त और मछली के डब्बे मौजूद हैं। भूख लगे तो खा लेना। मैं गोश्त हरगिज नहीं खाऊंगी। दो चार डब्बे फलों के भी हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तनहा छोड़कर तुम खराटे नहीं ले सकते, समझे? रीमा ने तेज लहजे में कहा। मेरे खराटे तुम्हारे सुकून में खलल अंदाज ना हो सकेंगे। तुम मजीद सुकून की तलाश जारी रखना। गुड बाय। हमीद ने आंखें बंद कर ली। नहीं, रीमा ने मुड़कर उसे झिझोड़ा। ए, हाथ न लगाओ मेरी जिस्म को, नामहरम औरत। नामहरम? नामहरम क्या? अब तुम मुझे अपनी जबान में गालियां दे रहे हो। यही समझ लो, सोने दो मुझे। नहीं, पहले तुम मुझे नामहरम का मतलब बताओगे? शराब की बोतल को कहते हैं। गलत कह रहे हो, कुछ और मतलब होगा। चलो, कुछ और ही होगा, अब पीछा छोड़ो। फिर वो उसे झिझोड़ती ही रह गई थी और हमीद बेखबर सो गया था। लेकिन दोबारा आंख खुली तो झिझोड़े जाने की नौयत ही बदली हुई पाई थी। ये रीमा नहीं थी जिसने उसे झिझोड़ कर जगाया था, बल्कि एक तवील कामत और अबाबीली मूंछों वाला फौजी था। उसके पीछे दो आदमी और भी थे, उनके जिस्मों पर भी फौजी वर्दियां थीं। क्या बात है? हमीद ने बड़ी मूंछ वाले को घूरते हुए पूछा। गाड़ी की किताब और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, जवाब मिला। हमीद ने रीमा की तरफ देखा, वो अगली सीट पर थी और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ओहो, रेंजर्स ने ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां कब से संभाल ली हैं? हमीद ने मुझे उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं पासबुक मांग रहा हूँ, रेंजर गुर्राया। अम्मा, तो इसमें खफा होने की क्या बात है? हमीद ने गाड़ी से उतरते हुए कहा और फिर अगली सीट पर जा बैठा। कुंजियों का चल्ला कहाँ गया? हमीद ने अग्निशमन स्विच को घूरते हुए रीमा से पूछा। मैं क्या जानूं? मैंने कुंजी अग्निशमन ही में छोड़ दी थी, वो डैशबोर्ड के मकफल खानों को पुरतश्वीश नजरों से देखता हुआ बोला। फिर रीमा पर उलट पड़ा। तुम बहुत लापरवाह हो, अब बताओ मैं कुंजियां कहाँ तलाश करूं? पासबुक और दूसरे कागजात उन्हीं खानों में बंद हैं। रीमा के होंठ हिले लेकिन आवाज ना निकली। हमीद का लहजा ऐसा ही था जैसे अपनी लापरवाह बीवी से हम कलाम हो। बस हुजूर, रेंजर हाथ उठाकर जहरीले लहजे में बोला, अब चुपचाप वो औजार निकाल लीजिए जिससे जिनाब ने इंजन स्टार्ट फरमाया था।
क्या मतलब? दफतन रेंजर ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, ये एक मसरूका गाड़ी है, तुम दोनों खामोशी से पिछली सीट पर बैठ जाओ।
हमीद ने सोचा, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब शायद ये लोग अपनी चौकी पर ले जाएंगे, कुछ न कुछ तो होना ही था। उसने रीमा को अगली सीट छोड़ देने का इशारा किया और खुद भी नीचे उतरकर पिछली सीट का दरवाजा खोलने लगा।
नहीं ठहरो, रेंजर बोला, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ।
हमीद ने चुपचाप तामील की, लेकिन जैसे ही एक सिपाही उसकी तलाशी के लिए आगे बढ़ा उसने हाथ नीचे गिरा दिए और बोला, ये नामुमकिन है, तुम मुझे गोली मार दो।
क्या मतलब?
मैं किसी नामहरम को अपने जिस्म में हाथ ना लगाने दूंगा।
इसके साथ ही ये पाठ अपने अख्तिताम को पहुंचा।